نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة فاتحہ کا ابتدائی حصہ ہم لوگ لاسٹ لیسن میں دیکھ چکے، آج انشاء اللہ تعالی ہم تھوڑا سا پیچھے سے ملاتے ہوئے اگلے حصے کو دیکھیں گے کہ بندگی کیا ہوتی ہے اور صراط مستقیم کیا ہے، کیونکہ اپنی اوقات کو سمجھے بغیر اور اپنے راستے کو متعین کیے بغیر اس کورس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ فاتحہ بندے اور رب کا بہترین تعلق پیش کرتی ہے. اگر سوچیں تو صحیح کتنی نعمتیں ہیں اس کی. اس کتاب کی طرف آنا سب نعمتوں سے بڑی نعمت، ہدایت کی طرف قدموں کا بڑھ جانا اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ شکر کا معاملہ ہے. جتنا شکر کریں گے اتنی نعمت بڑھے گی. کیا میں نے شکر کرنا سیکھا ہے؟ جب سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتی ہوں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ صرف عربی زبان کے رٹے رٹائے کچھ جملے، یا اس پکار کو اپنے دل پر بھی محسوس کرتی ہوں؟ دل پہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان جب تک کسی چیز میں اپنا دل شامل نہ کرے اس بات میں وہ رنگ نہیں آتا جو کہ مطلوب ہے. ہمارا ہدف کیا ہے؟ کہ ہم سورۃ فاتحہ کو اس انداز سے سمجھ جائیں کہ ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں، اور پھر پانچ دفعہ دن میں اپنے رب سے باتیں کرنے کا مزہ پا سکیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہو، اور اس لذت کو دنیا میں محسوس کرنے کی کوشش کریں جو رب کے ساتھ ملاقات میں ایمان والا قیامت کے دن محسوس کرے گا. اور پھر نمازیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گی. شکر کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
نہ شکر انسان ایک سزا کاٹ رہا ہے، اپنے مالک کا شکر نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہے؟ کہ وہ نہ تو اپنی تقدیر پہ راضی ہے، اللہ کی پہچان کے بغیر جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ دنیا میں آئے اور اپنی ماں کا حق نہ پہچانے. ماں نے میرے لیے کیا کیا، مجھے کیسے پیدا کیا، مجھے کتنی دیر پیٹ میں رکھا، आप देखते हैं कि जब से बच्चों को इन चीजों से थोड़ा दूर कर दिया गया उनके अंदर, फिर वो माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट नहीं रही, वो मोहब्बत नहीं रही। जब माँ बाप की बात उनको अच्छी लगती थी, तब उनको एहसास था कि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तुम सब कुछ हो और तुम्हारी बड़ी अहमियत है। नतीजा क्या निकला कि लोग वाकई अल्लाह से भी दूर हो गए और अपने पैदा करने वालों से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितने प्यार और जितनी मोहब्बत से कह सकें सुनाया करें अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। इससे आपके अंदर एक एहसास बेदार होगा, आपको अल्लाह ताला की ज़रूरत महसूस होगी, आपकी निगाह इबरत की निगाह बन जाएगी। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें तदब्बुर करना सिखाएं, कैसे सीख करते हैं? मैं कहती हूँ कि आप अपने बनाने वाले को पहचानना शुरू कर दें, क्योंकि जब दिल के अंदर कोई बात जाती है ना, वही जुबान पे आती है। झूठी बातें जुबान पे आए भी तो असर नहीं रखती। तो लिहाजा हमारा ये सफर क्या है कि हमने अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ना है, शुक्र वाला ताल्लुक, अर्रहमानिर्रहीम। जरा महसूस तो करिए, क्या वाकई अल्लाह ताला रहमान और रहीम है? क्या अल्लाह ताला का रहम है मेरे ऊपर? कोई कहीं दिल में कोई शिकवे तो नहीं भरे हुए? हजारों लाखों आपके ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा रहम क्या है? 5 सेकंड सोचिए, क्या रहम है उसका मेरी जात पे? जी, क्या बात समझ में आई? यानी अगर अंधे होते, नाबीना होते, देख ना सकते, रंगों की पहचान ना कर पाते। लोग तो कहते हैं ना अंधा होना, रंग एक ही होता उनके, यानी कलर ब्लाइंड जिसको बोलते हैं, क्या ये हुसन होता? किसी बाग में जाए तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखे, समंदर में तैरती हुई मछलियाँ एक ही रंग की दिखे, क्या ये उसका शुक्र नहीं? जी, आपके जहन में क्या वसीमा आया? बिल्कुल अपने अंदर की कैफियत बताइएगा, और जितने लोग सुन रहे हैं वो सब अपनी कैफियत लिखें अपने पास। जी बेशक, ये कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ सोचती हूँ, जहाँ जहाँ देखती हूँ, मुझे अल्लाह की रहमत ही दिखती है, उसका रहम ही दिखता है, उसने मेरे ऊपर इतनी रहमतें की हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ज़रूरत क्या है? अपनी निगाह को खोलने की, वुसअत पैदा करने की। जी सलवा, आपने क्या सोचा? ठीक है, शाबाश। ये कह रही है कि मुझे पहले तो दुनिया की नेमतें नेमतें लगती थी जो मेरे पास थी, उसका एहसास था, लेकिन अब दौरे कुरान के बाद मुझे हिदायत की नेमत और ईमान की नेमत की कदर महसूस हुई। अब जरा सोचें, क्या हम में से कोई ऐसा था अपनी मर्जी से मुसलमान हो जाता? हमने चॉइस की? क्या हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी इस्लाम के लिए, ईमान के लिए? वो लोग जो हिदायत पे आते हैं और उनके रास्ते में पत्थर बिछाए जाते हैं, हमारे तो ऐसे नहीं। आज तो वो सख्तियाँ और वो हालात नहीं रहे जो होते हैं पहले दौर में। तो लिहाजा हमें इस चीज़ पे वाकई शऊर के साथ अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि तूने मुझे मुसलमान बनाया। मैं तो लरस जाती हूँ ये सोच के कि अगर मैं मुसलमान घर में पैदा ना होती तो आज मैं कहाँ पड़ी होती, किस कुफर और गंदगी की यानी राहों पे मेरी ज़िंदगी गुजरती, और मैं आज भी वहीं रहती। तो मुझे तो वही लगता है कि वी आर मुस्लिम बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। जी, आपने क्या सोचा यास्मीन? उनको इस पे अल्लाह ताला का रहम महसूस हुआ कि उसने हमको इंसान बना दिया। लकद खलकना लिंसान फी अहसनी तकवीम थुम्मा रददनाहू अस्फल साफिलीन। इंसान को इंसान बनाया जाना ये भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। मट्टी में लोट पोट होते हुए जानवर होते, कोई रेंगते हुए कीड़े होते, कोई और हाल होता तो आज क्या कर सकते थे? और ये बहुत बड़ी बात है, हमें अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर इंसानों में कितना अच्छा बनाया, कितनी प्यारी शक्लें बनाई। मैं भी आपको बताती जाऊँ कि मुझे क्या महसूस होता है जब मैं ये कहती हूँ ना कि अर्रहमानिर्रहीम, मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा समंदर है, गहरा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, और मैं उसके पास खड़ी हूँ। बिल्कुल, शायद मैं उसमें डूब जाऊँ, शायद मैं उससे कुछ ले लूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत मुझे मौजे मारती हुई दिखती है। समंदर के अंदर एक हलचल है, एक तूफान बरपा है, और मेरे ऊपर तो इतनी रहमतें हैं उसकी, इतनी रहमतें हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। कंधे बोझल लगते हैं हर वक्त उसके एहसानों के साथ। किस चीज़ का शुक्र करूँ, किस चीज़ का एतराफ़ करूँ? इस्लाम दिया, इंसान बनाया, कितने अच्छे माँ बाप दिए, हमने उनको आज तक क्या दिया? वो क्यों रोते हैं हमारे लिए, क्यों दुआएं मांगते हैं हमारे लिए, क्यों नहीं फेंक दिया हमें? मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही फेंक नहीं दिया ट्रैश कैन में। ये अल्लाह की रहमत है जो उसने मेरी माँ के दिल में डाली। मेरे बाप ने मेरे ऊपर कितना खर्च किया, ये उस अल्लाह की दी हुई रहमत है, वरना कौन किसी पे खर्च करे अपनी मेहनत भरी चीज़ें? मुझे हर रोज़ स्कूल लेके जाना, मेरी तालीम, मेरी तरबियत, वो सारे मरहले जो घर वालों ने किए, ये अल्लाह की रहमत है। उसने मुझे दिए भाई बहनों का प्यार, फिर उस्तादों की मोहब्बत। एक एक कदम में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पीछे अल्लाह की ज़ात खड़ी है। और जब इंसान के दिल में सही मानों में अल्लाह की मार्फत होती है ना, तो हर इंसान के पीछे उसको रब की ज़ात दिखती है। फिर आपका शौहर अगर आपसे मोहब्बत की बात करता है, तो आप उसको नहीं देख रहे होते, आप उसके पीछे देख रहे होते हैं कौन है जो उसके दिल में डाल रहा है। अगर कोई इंसान आपको आके कहता है कि आपका बहुत, आपकी तारीफ करता है, तो आप सोचते हैं ये नहीं कर रहा, कौन है जो इसके दिल में डाल रहा है कि मैं इसकी तारीफ करूं। फिर अगर आपके बच्चे आपके साथ अच्छा मामला करते हैं, तो आप ये नहीं कहते मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मैंने बड़ी अच्छी तरबियत की। पीछे आपको अल्लाह की ज़ात दिखती है कि जो मेरे बच्चों के दिल में इस चीज़ का एहसास डाल रहे हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करें। दोस्त, अहबाब, साथी, अब सारे दिन की मेहनत करके हाथ में $100 का नोट लेके अगर आते भी हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि आज मैंने बड़ी मेहनत की और देखो मेरे कितने पैसे बन गए। आपको पीछे अल्लाह की ज़ात दिखती है कि उसने लोगों के दिल में डाला कि वो दूसरे की बजाय मुझसे चीज़ें खरीद रहे हैं। यानी चलते 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 आप महसूस करेंगे कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एक अन्न कतरा हो, गोया कि तुम उसको देख रहे हो। ये देखना ही तो है कि उसको महसूस करना। फिर इंसान बादल बरसते देखता तो कहता है सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह तूने पैदा किया, तूने बरसाए। धूप देखते तो कहता है अल्लाह कितनी सख्त धूप है। हर चीज़ में अल्लाह अल्लाह। और एक वक्त आता है कि फिर बंदा मोमिन की ज़िंदगी में अल्लाह ताला का लफ्ज़ इस तरह रच बस जाता है जैसे उसके जिस्म में खून गर्दिश करता है। फिर उसको जाए नमाज पे खड़े हो कि नहीं अल्लाह से बातें करने की ज़रूरत पेश आती सिर्फ, बल्कि हर वक्त उसके अल्लाह ताला से डायरेक्ट डायलिंग होती है। जहाँ मौका मिला, अल्लाह मेरी मदद, या अल्लाह मदद देना, बचा ले, परेशान हूँ। पतीली में चमचा चलाते हुए उसका जहन अपने रब के गिर्द घूम रहा होता है, मेरा रब किस तरह है, क्या चीज़ है। वो लोगों को भागते दौड़ते देखते हैं ना दुनिया में, इधर से उधर, उधर से इधर, तो फिर वो महसूस करता है मेरी भाग दौड़ किधर है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या वाकई मुझे भी अपने रब के साथ इतना ताल्लुक है। और होते होते फिर वाकई बंदे का रब के साथ एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक कायम होता है। इस तरह लगता है कि फिर इंसान एक एक चीज़ पे गौर करता है। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पहाड़ों की गोद में सोना रखा, सोने के ढेर है ना ज़मीन के अंदर, डायमंड्स हैं, क्या होता अगर अल्लाह ताला इनको पहाड़ों की बजाय ऊपर ज़मीन के रख देता, एक दिन में ख़त्म हो जाते। लोग हवस के मारे आते और बेचैन होकर सब लूट लाट के ले जाते, आने वाली नस्लों का क्या होता? अल्लाह ताला ने क़यामत तक पैदा होने वाली नस्लों के लिए ये ख़जाने छुपा के रखे हुए हैं कि तुम आहिस्ता आहिस्ता लो। अगर ज़मीनें एक ही दफ़ा सारा अनाज उग देती तो अगले साल के लिए क्या बचता? दिल तो इंसान का यही चाहता है ना कि इतना है तो इतना और मिल जाए, और से और मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ तक इंसान को दे दिया। और फिर इंसान जब दिल में अल्लाह का शुक्र करता है, उसके रहम को महसूस करता है, तो एकदम फिर लरस जाता है, मालिक की उम्मीद, ओ बदले के मालिक मुझे रुसवा न करना, मैं बड़ी गुनाहगार हूँ, अल्लाह मेरे पर्दे रख ले, मुझे तेरे वादों पे यकीन है, मैंने अपने अमल के मुताबिक कोशिश की, बड़ी कमजोरी है, अभी बड़ी खामी है, अभी कुछ नहीं कर पाई, एहसास बड़ा है अपने वक्त के ज़ाया करने का, अपनी नेमतों को इस्तेमाल करती हूँ तेरे रास्ते में कम देती हूँ। फिर इंसान कांपता है, कभी लरजता है, कभी खौफ खाता है, कभी उसकी रहमत याद आती है तो मुस्कुराने लगता है, नहीं देखना बच जाऊंगा, और कभी गुनाह याद आते हैं तो आगे से आगे आगे से आगे, और फिर इंसान दुनिया में अपने आप को शुतर बेमुहार नहीं समझता। वो ये नहीं कहता खुशी का मौका ऐश कर लो, वो ये नहीं कहता कि अब खैर है ना, अब इतनी भी क्या रिजिडिटी। फिर वो ये नहीं कहता कि बस अब छोड़ो ना भाई, अब इतने भी सख्त होने की क्या जरूरत है। नहीं, वो एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा रब मुझसे नाराज हो और मैं उसको नाराज करके जियो। ये कैसे हो सकता है? दुनिया के हर इंसान की नाराजगी से बड़ी नाराजगी उसको अल्लाह की नाराजगी लगती है। मालिक यौमिद्दीन, बस मालिक के अंदर एक इतना अजीब किस्म का जलाल पाया जाता है। किसी का घर देखे आप कहते हैं इस घर का मालिक है ये, कहते हैं वाह ये मालिक है, कितने बड़े घर का मालिक है, ये गाड़ी किसकी, ये इसकी मलकियत है। फिर इंसान को अल्लाह तआला की जब मलकियत का यकीन आता है तो उसकी बड़ाई महसूस होती है, कि सच यही है कि अल्लाह की कदर नहीं पहचानी। मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, दिन में 17 बार ये सूरत पढ़ते हैं कम अज कम, ये इतनी दफा तो कलमात कहलाते ही है ना फर्ज में, सुन्नत और नफिल अलग है, फिर और मौकों पे बोली हुई दुआओं में अलग है, लेकिन सच बताएं कितना अल्लाह बड़ा है हमारी जात में, हम कितना उसको बड़ा महसूस करते हैं। क्या इतने गुनाह हो सकते हैं अगर अल्लाह के मालिक यौम दीन होने का यकीन हो? इंसान कभी भी नहीं महसूस कर सकता इस कैफियत को। और फिर इसी तरह उसकी बातें, लोग कहते तुम बोलती क्यों नहीं, तुम बातें क्यों नहीं करते, पहले तो तुम बोलते थे। इसलिए कि जब एक बंदे के दिल पे अल्लाह की बड़ाई छाती है ना तो उसकी जुबान बंद हो जाती है। ये अपने बस लिख लें क्राइटेरियन, जब अल्लाह से मोहब्बत और मार्फत होती है तो बातें कम करना शुरू कर देते हैं। आपका दिल ही नहीं करता बोलने को, क्यों? कि बोलने का और सोचने का अमल एक साथ नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना, जब आप सोचते हैं तो बोल नहीं सकते, आप जब सुनते हैं ना तो भी नहीं बोल सकते। इसी तरह जब हम बहुत लोगों की भीड़ में रहते हैं ना तो हम उनकी बातें सुनते हैं, हम उनके साथ बोलते हैं, और बाज़ अवर सब बोल रहे होते हैं सुन कोई भी नहीं रहा होता। लेकिन जब अल्लाह से मोहब्बत होती है ना तो आपकी तबीयत में एक तब्दीली आएगी, वो क्या है कि आपको तन्हाई अच्छी लगेगी। लिखे अपने पास, पहले अपनी मौजूदा कैफियत देखें, मुझे तन्हाई कैसी लगती है? खौफ आता है, वहशत होती है, दम घुटता है, डिप्रेशन होने लगता है, और दूसरी कैफियत क्या है कि नहीं मुझे सुकून मिलता है, मैं इंजॉय करती हूँ तन्हाई को, मैं खुद से बातें करती हूँ, मुझे अपने लिए वक्त मिलता है तो मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करती हूँ। अगर पहले वाली कैफियत है ना तो ये अल्लाह ताला से दूरी की अलामत है, आपको कुर पैदा करने की ज़रूरत है। और अगर दूसरी कैफियत है तो फिर इसको दो तरह से आप देखेंगे, क्या मैं, लिखेंगे आप अपने पास, क्या मैं तन्हाई में क्या करती हूँ, यानी मुझे मौका मिलता है कि आज घर के सब लोग किसी दावत में जा रहे हैं या कहीं भी, और मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, ना शोहर पास है कि जिसकी वजह से कुछ मसरूफियत का एहसास होता, ना बच्चे पास हैं कोई डिस्टर्बेंस हो, ना घर में कोई दूसरा फर्द है जो रोक टोक करे, अब मेरा अपना वक्त है। अमूमन तन्हा होते हैं तो क्या करते हैं? बास लोग सफाइयाँ शुरू कर देते हैं, बास कपड़े सीना शुरू कर देते हैं, बास अलमारियाँ ठीक करना शुरू कर देते हैं, आप लोग क्या करते हैं? जी आप सीमा, ये कहती हैं कि मैं जब अकेली होती हूँ तो मुझे जो नात अच्छी लगती है मैं उसको रिमाइंड करके सुनती हूँ, ठीक है, आप क्या करती हैं?
थोड़ा तन्हाई से परेशानी रहती है।
परेशान होती हैं तन्हाई से, खौफ आता है? अच्छा तो ये तो अच्छी बात नहीं है।
नमाज पढ़ लेती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, फिर कभी फोन करके
अच्छा ये कहते हैं कि तन्हाई में भी फोन पे रहती हूँ कि तन्हाई दूर हो जाए। हाँ अच्छा, सलवा आप क्या करते हो? रुके हुए काम करते हो जी आप, ये तन्हाई में बुक रीडिंग करती हैं क्योंकि उस वक्त बहुत फोकस होता है इंसान। जब आप अकेले होते हैं ना तो आपका खुद बहुत अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ता है। नबी सल्लम की नबूवत की अगर इब्तदाई चीज़ें देखें तो उनमें एक चीज़ क्या थी कि आप तन्हाई पसंद हो गए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने इस चीज़ को महसूस किया कि आप जौ ले लेते, पानी लेते और गारे खिरा में चले जाते और वहाँ अकेले में इबादत करते, कई दफ़ा एक एक दिन का तोशा लेते और दूसरे दिन पे आते। حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملنی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، 40 راتوں کے لیے طور پہ لے گئے، یہاں اکیلے رہو. یہ جو علم کا سفر ہم طے کرنے والے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے تھوڑا سا ذہنی طور پہ تنہا کرنا پڑے گا، جدا کرنا پڑے گا. اچھی علامت ہے تنہائی ہو پسند ہونا، کیونکہ انسان اس میں اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، رات کے وقت میں، دن کے وقت میں. کہ جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو آپ واقعی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ تم دو نہیں ہوتے بلکہ تیسرا تمہارے پاس رب ہوتا ہے، تم چار ہوتے ہو تو پانچواں وہ ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ موقع ملا تنہا رہنے کا، اور مجھے خوف تھا دل میں کہ نہ جانے مجھے کتنا ڈر لگے گا. آپ کو معلوم ہے لوگ ڈراتے رہتے ہیں، حالات اچھے نہیں، یہ نہیں ہے. میں نے دل میں سوچا کہ چلے میں دیکھوں گی کیا ہوگا. بہت لوگ آفرز کرتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میں ٹرائی کرتی ہوں، کیونکہ میرے پاس کام بہت ہے اور یہ وقت ایک غنیمت دکھتا ہے کہ جس میں انسان واقعی اپنے حساب سے کام کر سکے. تو خیر اختیارتاً ہماری بہت اچھی ساتھی ہیں، تو میں نے ان کو فون نمبر دے دیا سب. میں نے کہا کہ چلے مجھے ڈر لگا تو میں آپ کو فوراً فون کر دوں گی، میں اپنا فون پاس رکھیے گا. انہوں نے کہا آپ رات چاہے 2 بجے ہو 4 بجے مجھے فون کر دیجیے گا تو میں فوراً آ جاؤں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر میں نے ہنس کے، وہ کہنے کی ویسے 911 بھی ہے اور اس طرح کی باتیں بھی ہیں. تو الحمدللہ سم الحمد، میں اتنی اس چیز پہ خوش ہوں کہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جس کو میں کہوں مجھے بالکل خوف نہیں آیا. ایک ہفتے سے بھی زیادہ کا وقت میں نے گزارا اور میں نے اتنا انجوائے کیا. دن میں سب لوگوں کے پاس تھی، ریلیٹیوز بھی ہیں، ان سے بھی سب چیزیں، لیکن میں نے کہا نہیں، اپنی کلاسز ہیں، اپنا سیٹ اپ ہے، اگر میں کہیں بھی چلی جاتی ہوں وہ بات نہیں بنتی. تو یہ دن اتنے اچھے گزرے اور میں نے بہت کچھ پایا. یعنی جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا نا تو آپ کو رب زیادہ یاد آتا ہے، پھر اس سے باتیں کرنی اچھا لگتی ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہو. اور میں نے سوچا کہ ہم انسانوں کی بھیڑ میں کیوں رہتے ہیں؟ لوگ خوف زدہ رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ بچے چلے جائیں کہیں تو گھر کھانے کو دوڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی لذتیں ہیں، اصل جو ساتھ دے گا نا وہ آپ کا، وہ آپ کا رب ہے، نہ وہ کہیں چھوڑ کے جائے گا. اور اگر آپ بھی جہاں سے جائیں گے تو وہ اپنے پاس ہی بلائے گا. میں نے دیکھا کہ لوگوں کے جب ماں باپ میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ زارو کتار ہوتے ہیں، آہو زاری، کیا ہائے ماں تھی چلی گئی، اب کس کو دکھ سنائے. کبھی کسی کے شوہر کا انتقال ہو تو عورتیں کہتی ہیں ہائے بڑھاپے کا ساتھ چلا گیا، کس کو کہیں گے، اب کس سے دکھ سکھ کریں گے. کبھی جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ماں کہہ رہی ہوتی ہے ہائے میری تو ساری امیدیں تجھ کے تیرے ساتھ تھی. میں سوچتی ہوں کہ ان کو اس وقت اتنا جو غم ہے، یہ غم بھی تو ایک تکلیف ہے نا، یہ تکلیف کیوں پہنچی؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. تو پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو اس مقام پہ لے جانا جہاں اللہ کا مقام ہے، یہ ہے سزا. کیونکہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کی محبت میں، باپ سے، ماں سے، بھائیوں سے، ہر ایک سے زیادہ پیار ان کو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے یا اس کے رسول سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیارے ہیں، بس میری جان سے زیادہ نہیں. سچ بولا انہوں نے کہ میں جان نہیں دے سکتا آپ کے لیے، باقی سب کچھ دے سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر، یاد رکھو کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی ذات سے، اس کے باپ، اس کے بیٹوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یہی تقاضا اللہ تعالیٰ کا ہے. اپنے دل کو سچی طرح سے محسوس کریں، یعنی مثلاً بڑی پرسنل سی کیفیت اپنی محسوس کریں کہ آپ جب کسی سے کہتے ہیں کہ آئی لو یو، تو وہ آپ کے دل کا عمل ہوتا ہے. یعنی مثال ہے، آپ نے کسی سے بھی کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، عموماً ہم کس کو کہتے ہیں آئی لو یو؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ تو بچوں کو کہتے ہوں گے، اور کس کو کہتے ہیں؟ کبھی شوہر کو کہا ہے کہ نہیں؟ ہے، اس کا بھی حق ہے، کہنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کو کہا کبھی؟ ماں باپ سے کہنا چاہیے نا، اعتراف نعمت کا ایک ذریعہ. हिसाब लें कि जब मैं किसी को भी कहती हूँ कि आई लव यू, तो क्या ये मेरे प्यार की इंतहा होती है? मुझे सबसे ज्यादा प्यार किससे है? जैसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकाबुल करें, किसके बगैर मैं रह नहीं सकती? देखें अपने पास, हर दौर में इंसान की मुख्तलिफ कैफियत होती है ना। बचपन में ऐसे लगता है कि माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते, फिर बड़े होते हैं तो भाई बहनों से मोहब्बत होती है, लगता है उसके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मैंने देखा है कि इंसान फिर भी रहता है। इतने दावे करने वालों के सामने उनके प्यारे चले जाते हैं, उनके हाथों से निकल जाते हैं, कोई नहीं मरता। मिन्नतें कर लें, समाजतें कर लें, रो लें धो लें, कोई साथ नहीं जाता। और अगर कह दे कि अच्छा इतना गम है, आओ तुम्हें इसके साथ कब्र में फिर डाल दें, फिर सारी मोहब्बतों के पोल खुल जाते हैं। इस तरह मैंने देखा है बीवियाँ शोहरों के बारे में ये सोचती हैं, इनके बगैर मैं नहीं जी सकती। मैंने देखा कि एक यंग लड़की थी, उसके मियाँ का इंतकाल हुआ, बहुत खिदमत भी की बीमारी में उनकी, फिर जब इंतकाल हुआ सब सोच रहे थे कि जहनी तौर पे तैयार होगी कि सदमा ये पहुंचने वाला है, लेकिन उस लड़की ने हद से ज़्यादा कर दिया। जब मैयत को लेने आए शौहर की, तो रास्ता रोक के खड़ी हो गई, कहने लगी मैं नहीं जाने दूंगी, शर्पे को नहीं जाने दूंगी। समझा रहे हैं लोग, सब्र करो, हौसला करो, ये सब्र का वक्त है, तुमने बच्चों के लिए जीना है। एक ही उसकी अडाट है कि मैं चारपाई नहीं लेके जाने दूंगी, मैं इनके बगैर जी नहीं सकती। खैर लोगों ने चारपाई उठाई तो उसके साथ लटक गई। कितनी दूर तक वो चारपाई गई और वो साथ लटकती रही कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाने देना, मैंने नहीं जाने देना। लेकिन थोड़े दिन गुजरे, सब ठीक हो गया, अल्लाह ताला ने सारे मामले सीधे कर दिए। कभी कोई किसी के बगैर ये कहता है ना, मैं रह नहीं सकती, इसकी ज़िंदगी से निकाल दें, ये जुमला बहुत बड़ी कीमत दिलवाता है। अगर किसी को भी आप ये कहते हैं ना कि मैं इसका गम नहीं देख सकती, आपको उससे गम मिलेगा, उसकी तरफ से गम मिलता है। कभी आपने देखा है किसी एक औलाद से बड़ा प्यार होता है, सब बच्चों में वो ज़्यादा प्यारी लगती है, अमूमन देखा गया उसी का गम मिलता है। बाज़ दफ़ा एक बेटा होता है और बहुत सारी बेटियां होती हैं, उसका गम आ जाता है। कभी सुना आपने? मेरी एक दोस्त है पाकिस्तान में, मेरे घर में चार या पांच या छह बहनें हैं, वो सब जवान, बड़ी बहन है, एक भाई। अब आप सोच सकते हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, फिर दादी भी बूढ़ी जो उनसे भी बूढ़ी हुई, बेटा भी जवान है, सब बहनें, अब वो भाई कितनी लाड और मोहब्बत वाला ना होगा कि बहनें तसव्वुर नहीं कर सकती कि उसके बगैर जिए और उसके साथ क्या हो। जवान हुआ भी बहुत, उम्र भी नहीं, सिर्फ 20 शायद कुछ इस तरह की उम्र हुई, तो मोहब्बत में कहा कि हम इसकी जल्दी से शादी कर देंगे। बड़ी प्यारी सी लड़की, छोटी सी उम्र की लड़की, हम खुद उसकी शादी में भी गए, ढूंढा, बड़े चाव से शादी कर दी। और बहनों के तो पाँव जिसको कहते हैं ना कि ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, कि आज हमारे अकलौते भाई की शादी है। फिर शादी हुई, फिर उसके बाद 1 साल के बाद बच्ची भी हुई, भाई के बेटी हो गई। कहा कोई बात नहीं, अल्लाह बेटा भी देगा, क्योंकि इतनी बहनों के बाद फितरी ख्वाहिश थी कि बेटा मिले। और फिर आपको पता है कि एकदम अचानक क्या हुआ, कुछ माह गुजरे और एकदम खबर आई कि वो लड़का जो था वो दोस्तों के साथ स्विमिंग के लिए गया, पिकनिक में था, और उसने स्विमिंग पूल में डाई मारी, जैसे सर के बल गया, पानी वहां थोड़ा था, उसका सर जो था नीचे जमीन को लगा, बेहोश हो गया, और एक दिन शायद हॉस्पिटल में रहने के बाद वो मर गया। मेरे लिए ये खबर ऐसी थी कि जैसे मैं सोचती थी अभी कोई भी नहीं बचेगा, छह बहनें, एक बीवी, एक बेटी, कितनी औरतें होंगी, नौ, बीवी माँ, बूढ़ी दादी और एक बूढ़ा दादा बाप। और आपको पता है कि कुछ दिन गुजरे तो पता क्या चला कि बीवी फिर प्रेग्नेंट थी। उनको नहीं पता था उस वक्त, जब बाप का इंतकाल हुआ नहीं पता था। फिर एक उम्मीद लग गई कि शायद, चलो खैर, 9 महीने की इद्दत उस लड़की ने गुजारी, उसके बाद फिर एक और बेटी हो गई। अब इस वक्त वो 22-23 साल की लड़की दो बच्चियों के साथ ससुराल में बैठी है। सब जी रहे हैं, सब दुनिया चल रही है, चला गया, साबिर थे, अल्लाह ने सबर दिया, लेकिन अगर ये बात उनको पहले से पता हो तो जी सकता। असल मोहब्बत का मुकाम क्या है? अल्लाह की जात, उससे मोहब्बत करनी है। हम उसको पीछे डाल के दूसरों की मोहब्बतें लेने की कोशिश में दुनिया में जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, और नतीजा क्या होता है कि जिनसे हमें मोहब्बत होती है जब वो चले जाते हैं, या अगर हम उनको छोड़ जाते हैं तो उनको सदमा देते हैं। अपने वालिद की वफात जो अचानक हुई, उसके बाद मैंने मोहब्बत करना छोड़ दिया। मुझे लिटरली अपने बारे में ये महसूस होता था, मुझे बचपन की अभी भी वो सारी बातें याद आती हैं, कि मैं बहुत हसास होती थी अपने घर वालों के मामले में, भाई बहनों अम्मी अबू। मुझे आज भी वो छोटी छोटी मासूम दुआएं याद हैं अपने बारे में। मैं कहती थी, अल्लाह ताला मुझे अपने घर वालों में सबसे पहले मौत देना, यानी मैं अपने भाई बहनों अम्मी अबू किसी को मैं ना देखूं, मुझे मौत देना। मैं सोचती सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इनके बगैर कभी जी सकती हूँ। लेकिन आप देखिए कि जब वक्त आता है तो इंसान सह जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सदमों से एक फायदा ये बहुत हुआ कि उसके बाद मोहब्बत करनी छोड़ दी, जुनून की हद तक, दीवानगी की हद। आज भी मोहब्बत है। आज मैं कभी अपने शौहर से ये कहूँ ना कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो साथ ही मैं सच बोलती हूँ, मैं कहती हूँ लेकिन अल्लाह ताला से कम। ये मैं कहूँगी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा है लेकिन अल्लाह ताला से कम। वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। हम जब मोहब्बतों में बहुत आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर उसका नतीजा क्या होता है, हमारी तवज बढ़ जाती है, फिर हम उनको खुश करना चाहते हैं, हम उनको नाराज करना चाहते हैं। और मेरा ये भी ईमान है कि अगर किसी को मुझसे मोहब्बत है ना, तो उसके भी दिल में इसलिए कि मेरे रब ने डाली। मुझे ये शोहर क्यों मिला, मेरे रब ने चाहा कि मुझे ये दे। मुझे ये मोहब्बतें क्यों मिली, मेरे रब ने चाहा कि मुझे मिली। कभी आपने वो पुरकार देखी जिसके एक सिरा बीच में होता है और बाकी इर्द गिर्द, छोटा दायरा लगा लो तो भी, बड़ा लगा लो तो भी, वो नुकता नहीं हिलता। बंदे मोमिन की जात उस रब के गिर्द घूमती है, यानी आपका दिल का फोकस पॉइंट क्या है, अल्लाह की जात। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बलिल्लाह, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है असल बात, कि तेरा मेरा जीना मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ये सिर्फ रिचुअल्स का नाम नहीं, मेरी तन्हाई तेरे लिए। मैं महफिलों में भी तुझे नहीं भूलती, मैं तन्हाइयों में भी तुझे याद रखती हूँ। मैं रात की घड़ियों में उठती हूँ तो मेरी जुबान पे तेरा नाम होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। मुझे नेमत मिलती है तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। मुझे गम मिलता है तो मैं कहती हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कोई प्यारी चीज देखती हूँ तो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह। मैं कोई नागवार बात सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मैं बिस्तर पे जाती हूँ तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया। मैं रात को करवट लेती हूँ तो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू। आप सोच सकते हैं बंदे मोमिन की जिंदगी का कोई एक लम्हा उस रब के बगैर है कि उसका नाम ना। सुबह उठते ही पहला कलमा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। बाथरूम में गए, बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबास। आईना देखा तो अल्लाहुम्मा कमा हसन तखल्की व हसन खुलुकी। घर से निकलने लगे, बिस्मिल्लाही तवक्कल तो। कोई चीज है गाड़ी में बैठे, सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। बाजार में गए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द। कोई एक लम्हा देख ले जहां अल्लाह का जिक्र ना हो और अल्लाह की याद ना हो। जाती लम्हात कि एक शोहर बीवी के पास जाए तो कहा वो पढ़ता है अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क्तना। अल्लाह हमें पाक कर दे इस शैतान मर्दूत से। एक गैर महसूस तरीके से आप अपने इर्द गिर्द रब को महसूस करेंगे। खाना खाते हैं, गले में कुछ अटक गया तो एकदम याद आएगा, मैंने कुछ गलत किया है, ये मुझे क्यों लगा, ये गले में पानी क्यों चला गया। उठते हुए एकदम कमर में बल पड़ गया एकदम, फिर आप सोचेंगे मैंने क्या किया, कुछ करके आई हूँ गलत जिसकी सजा मिली। इस मुहासबे का एक फ़ायदा होता है कि इंसान खुद अपना निगरान बन जाता है, अपना उस्ताद खुद बन जाता है, अपना नासिख बन जाता है। दूसरे उसको देखे ना देखे वो खुद अपने आप से डरने लगता है, और यही है कैफियत फिर इयाक नाबुदु इयाक नस्तईन की, कि अल्लाह जब दिया सब कुछ तूने तो फिर मेरा भी सब कुछ तेरे लिए है, मांगूंगी भी तुझसे और दूंगी भी तुझको। इयाक नाबुदु क्या है, देना, और इयाक नस्तईन क्या है, लेना, यानी मेरा सारा लेन देन तेरे लिए, सब कुछ बस तेरी तरफ जाएगा मेरा, एक डॉलर भी मेरा जो खर्च होगा तो मैं सोचूंगी कि ये कहाँ गया, ये मेरे नाम पड़ा या मेरे रब के नाम पे गया। अपने नाम पे जाएगा तो गम करूंगी कि हिसाब देना पड़ेगा, और रब के नाम पे जाएगा तो शुक्र करूंगी कि मेरे रब के नाम पे गया, अब वो मुझे इसके बदले में और देगा। वक्त अपने काम पे लगा तो गम लग जाएगा कि इसका हिसाब देना पड़ेगा, और रब के नाम पे लगा तो खुशी होगी कि इसके वजह से बाकी वक्त में बरकत होगी। एक एक चीज़ फिर बंदे की रब के साथ जाने लगती है। और ये जो इया का ना बुद्धू कहना है ना, ये असल में वही जुमला है जो हम कई लोगों को झूठ बोलते हैं, क्या ओनली फॉर यू, आई लव यू, जस्ट फॉर यू। इया का नाबुदू कहना असल में आई लव यू कहना ही है, लेकिन इसकी शिद्दत को बढ़ा के इंतहाई मोहब्बत। इबादत का लफ्ज है ना, इसलिए दो लफ्ज सोचा करें, क्या अल खुदू व तजल्लुल, आजजी और झुकना। ए अल्लाह मैं आजिज हो गई, झुक गई, गुलामी बंदगी, ए अल्लाह मैं तेरे आगे झुक गई, तूने मुझे सब कुछ दिया, मैंने अपने सारे नेक जज्बात तेरे लिए रख दिए। और फिर मोहब्बत, सारी मोहब्बत तेरे साथ, जो तुझे दे सकती हूँ जज्बात वो किसी और को नहीं दे सकती। कमाल अल हुब कमाल अल जुल, मोहब्बत की इंतहा भी और आजी की इंतहा भी, यही है वो कैफियत कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि लो अनजल नहाजल कुरआन अला जबल लरअईतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह, कुरान पहाड़ पे नाजिल होता तो वो झुक जाता। अल्लाह भी हमसे यही चाहता है कि हम उसके सामने आए तो झुक जाए। आपको कभी महसूस होता, यानी जब आप कुरान पढ़ते हैं और जब ये कुरान आपको समझ में आता है, आपके अंदर उतरता है, तो आप अपनी कैफियत को लफ्जों में बयान कर सकते हैं कैसी महसूस होती है? मुझे पता है कि महसूस होता है, ब्लेंडर, दूध डालते हैं उसमें, फ्रूट डालते हैं, चीनी बर्फ डाल, उसको ब्लेंड करते हैं, तो जब ब्लेंडेड फॉर्म में आता है तो कुछ भी नहीं दिखता कि इसमें कितने फ्रूट डाले थे, क्या निकला था। मुझे महसूस होता है कि इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत में ब्लेंड हो जाए, अपनी हस्ती मिट गई, अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ गई, और इतना ज़्यादा फिर इंसान अपनी हस्ती को महसूस करे कि मैं कुछ भी नहीं। बाज़ दफ़ा हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बड़े बड़े जुमले बोलते हैं, ये बात मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं झटपट में कर लूंगी, नहीं ये नहीं आ सकते, ऐसे बंदे की जुबान पे ये जुमले नहीं आते। हाँ क्या आते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर उसकी मर्जी हुई इंशाअल्लाह, अगर उसकी रजा हुई, अगर उसने चाहा तो वाकई ये होगा। और आप देखिए कि जब बंदे का रब के साथ ऐसा ताल्लुक पैदा होता है ना, फिर उसको लोगों की ज्यादा परवाह नहीं रहती, अमूमन देखा है कि लोग लोगों से मिलके कट जुड़ के और उनकी गलत में भी मिलते हैं, क्यों कि फिर आखिर हमें भी तो इनकी जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, इस्लाम मिलने जुलने को पसंद करता है, इज्तमाईयत तो खुद सिखाता है दिन में 5 दफा नमाजों में मिलके, लेकिन किसी की वजह से रब को नाराज करना ये इस्लाम नहीं सिखाता। जब इंसान अल्लाह तला से अपना मामला सीधा रखता है ना, तो अल्लाह तला खुद ब खुद उसके बाकी मामले सही कर देता है। अपने ताल्लुक को महसूस करें और लिखें अपने पास। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ सुन के समझ आ जाती हैं, कुछ लिखी हुई चीज़ें फिर बाद में इंसान को याद दिलाती हैं। क्या वाकई मेरी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं? क्या मैं सिर्फ अल्लाह ताला से मांगती हूँ? क्या वाकई मैं अल्लाह ही की इबादत करती हूँ? क्या उसी के आगे झुकती हूँ? क्योंकि इबादत के अंदर सिर्फ रिचुअल्स नहीं है नमाज रोजे के, बल्कि इताअत और गुलामी। क्या मैं अपने आप को अल्लाह के सामने ऐसे महसूस करती हूँ जैसे एक गुलाम अपने आका के सामने महसूस करता है? कभी घर में कोई मुलाजमा हो, कोई आपका वर्कर हो, क्या महसूस करते हैं उसके लिए? आज तो गुलामी है ही नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय से ही लोग क्या चाहते हैं? मुकम्मल एहतियात। कोई सोच नहीं सकता कि अपनी मर्जी से कुछ हेर से फेर कर दे, इधर की बात इधर कर दे। बस आप देखिए कि अगर आप कहीं घर में आने से पहले आपके पास घर में कोई हेल्पर हो, आप उसको कि अच्छा ये काम कर देना, आप चले जाएं। अब जब रात को आप वापस जाएंगे तो आप सोचेंगे ना कि ये सब काम हुए होंगे, लेकिन आप देखें कि उनमें कोई काम नहीं हुआ। मिसाल है कि आपके घर में कोई मेट है, कुछ है, आपने कहा अच्छा किचन साफ कर देना या सो ऑन कोई बात है, आपको एकदम गुस्सा आए और आप उसको कहें कि बुलाए कि भाई तुमने कुछ किया नहीं, तो कहेगी नहीं मैं तो सारा दिन काम करती रही, क्या किया? तो वो फौरन आपको अंदर ले जाए और क्लोजेट्स दिखाने लगे, कोई अंदर की अलमारी दिखा दे, कोई और काम दिखा दे जो आपकी फिलहाल जरूरत नहीं थी, वो क्या देखे मैंने इसको कितना चमका दिया और इतना चमकाया कि मैं ये काम नहीं कर सकी, खाना नहीं पका सकी आपके लिए। क्या महसूस होगा? आप कहेंगे कि जरूरत किस चीज की थी? इतनी सी भी कमी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें जो काम कहे, पहली बात है कि वो करें ही ना, और दूसरी बात है वो ना करें अपनी मर्जी की नेकियां कर लें चंद बेदाद की सूरत में, ये सोच के क्या फर्क पड़ता है, नेकी तो कर ही रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, ये काम तो है ही ना और फारिग थोड़ी बैठे हैं, तो क्या अल्लाह को वो काम पसंद आएंगे? नहीं आएंगे। तो जरूरत किस बात की है कि फिर इंसान वैसे ही काम करे जैसे कि रब का हुक्म है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। अब यहाँ तक सूरत के दो हिस्से पूरे हुए, पहले में अल्लाह ताला की मोहब्बत और दूसरे में अपनी आजजी, और यही दुआ मांगने का एक अदब भी है। कभी भी दुआ मांगे इसी अंदाज से मांगे, शुरू में अल्लाह ताला की तारीफ करें फिर अपनी बेबसी का इजहार, जैसे आयत करीमे में आता है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, यहाँ तक है अल्लाह की तारीफ, फिर इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, बेशक मैं जालिम हूँ, खत्म, कुछ नहीं मांगा। वो मारूफ कलमा जिसको हर बंदा मुश्किलात में पढ़ता है, आप सोचिए उसमें मांगा क्या है? कुछ भी नहीं मांगा, दो बातों का इजहार है, अल्लाह की हाकमियत का, उसके आबिद होने का और अपने माबूद होने का। क्यों इससे अल्लाह तआला निजात दे देते हैं, कभी सोचा है आपने? अल्लाह तआला का ये तकाजा नहीं है कि बंदा जुबान भर भर के मांगे, अल्लाह ये भी दे दे, ये कुर्सी भी दे दे, ये मेज भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह आग के हिसाब से बचा ले, उससे बचना चाहता हूँ। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर बंदा जुबान से नहीं मांगता कि क्या मांगू, एहतिना से एक दुआ शुरू हो गई ना, मांगने वाले ने क्या मांगा? हिदायत की दुआ मांगी, चीज़ें तो बहुत हैं लेकिन हिदायत क्यों मांगी? क्योंकि सबसे बड़ी नेमत ये है, इहदिनस सिरात मुस्तकीम। ऐसी जिंदगी सिखा, ऐसा रास्ता दिखा कि जिस पे चल के जन्नत को पा लूँ, ऐसा लाइफस्टाइल कि जिसके जो तेरा दिखाया हुआ हो, जो तेरा सिखाया हुआ हो। ऐसी बन जाऊँ जैसी तुझको पसंद आ जाऊँ। दीन इस्लाम का तरीका, सही मंजिल पे पहुंचने का रास्ता। क्यों? इसलिए कि रास्ता भटक जाए तो पीछे रहता क्या है? आप देखिए कि आप कुछ भी लेना चाहें जो राह गुम कर दे, पीछे क्या रहा? कुछ भी रहा नहीं ना। अब आप देखिए कि जब दुआएं मांगते हैं आप तो कैसे मांगते हैं? देखिए कि अमूमन जो दुआएं मांगी जाती है ना इस क्लासरूम से बाहर, जो आम जिंदगी में अमूमन जो दुआएं होती हैं, वो कैसी दुआएं होती हैं हमारी अमूमन? माल की, औलाद की, घर की, बच्चों की। क्या नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बात मैं कर रही थी इधर, वो ये थी कि जब वाकई इंसान के दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई आती है ना और अपना छोटा होना मिलता है, तो वो फिर अपनी जरूरियात नहीं मुंह पे लाता। वो सारी बातें दिल में रख के ना, तो फिर उसके बाद क्या कहता है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी जुबान पे वो दुआ आती नहीं जो सोची होती है, बल्कि अल्लाह ताला की मजीद तारीफ और अपना मजीद झुकना। तो असल बात क्या है कि यहाँ हिदायत की दुआ मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर हम हिदायत पे ना होते तो क्या बनता? मैं जब किसी गैर मुस्लिम को देखती हूँ ना अपने इर्द गिर्द चलते फिरते, आप लोग भी देखते होंगे, मुझे फौरन इस नेमत की कदर आती है। इहदीना अल्लाह ताला, तूने कैसे हमें बगैर मांगे दे दी हिदायत? इनको नहीं दी, कीमती चीज़ है कि नहीं? आप महसूस करें अगर इस नेमत को, तो आपके पास जितनी नेमतें उन सब में से ये बड़ी हैं। बस आप एक तरफ अपनी दुनिया की सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपके पास मौजूद है, नेमते हैं, बच्चे, औलाद, माँ बाप, घर, गाड़ियाँ, ये सब होता और इस्लाम ना होता। अब लम्हे के लिए माँ ना होती, पैदा होते ही माँ मर जाती, मिसाल अल्लाह ना करे। क्या वो शख्स ज्यादा काबिले रहम है या वो बंदा जो आज गैर मुस्लिम है? सच बताएं, इस्लाम, ईमान। फिर उससे बढ़ के वो शख्स कितना काबिले रहम है जो मुसलमान पैदा तो हुआ लेकिन आज हिदायत से दूर है? उसने तो ऐसे जैसे चीज पा के खो दी। एक चीज नहीं मिलती ना तो खैर है, चखी नहीं होती, उसका मजा नहीं, लेकिन एक चीज पा के खो दी जाए ना, वो बड़ी तकलीफ देती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मुझे ऐसे लगता है कि जब इंसान इस किताब की खिदमत करने लगता है ना, तो सबसे ज्यादा उसको अपनी इसी नेमत की फिक्र लग जाती है कि अल्लाह, कल तक अकेले थे, अब दूसरों का साथ है। ऐसा ना हो कि हमारा एक कदम गलत पड़े और सब उसी रास्ते पे चलने लग जाए। ऐसा ना हो कि हमारी कोई बात तुझे नापसंद लगे और तू इस काम को हमसे छीन ले। लिहाजा जब हम ये कहते हैं ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हम चार तरह से दुआ मांगते हैं, वो लिखिए। हिदायत की दुआ चार तरह से होती है। एक इसका तरीका क्या होता है कि रास्ते की तरफ रहनुमाई कर। अभी इसकी तफसील बताऊंगी, सिर्फ लिख लें। दूसरा होता है रास्ते पर चला भी दे। और फिर मंजिले मकसूद पर पहुंचा। यानी इरशाद, तौफीक, इल्हाम और दलालत, ये चार लफ्ज हैं जो इस एक हिदायत के नेमुल बदल में लिखे जाते हैं। इरशाद, पहुंचा देना, तौफीक यानी तौफीक दे चलने की, इल्हाम अच्छे और बुरे की पहचान, और दलालत, दलालत मीन के तू हमारी सिफारिश कर दे। अब आप देखिए कि नबियों ने भी यही दुआएं मांगी, नबी सल्लम ने भी तो ये दुआ मांगी ना, सहाबे कराम ने भी मांगी। आज कुछ लोग इस पे मुगालता देते हैं कि दिन सिरात अल मुस्तकीम तो वो मांगे जो हिदायत पे नहीं, हम तो माशाल्लाह बहुत हिदायत वाले, हम क्यों मांगे? और क्या नाउज़ुबिल्लाह तुम्हारा नबी हिदायत पे नहीं था, तभी उसने ये मांगता रहा ना? लोग कहते हैं ये बात, तो उनका मुगालता भी दूर होगा और आपका भी जहन खुलेगा जब आप ये चारों मानों को समझेंगे। मिसाल देती हूँ आपको कि मिशन में मस्जिद जाना है, आपको रास्ता मालूम नहीं। एक तरीका क्या है कि आप किसी से यहाँ पूछें कि मस्जिद किधर है, और वो वहीं अपनी जगह पे खड़ा खड़ा आपको कह दे कि अच्छा यहाँ से बाहर निकलें, फिर लेफ्ट लें, फिर राइट, फिर मुड़ेंगे तो साथ ही मस्जिद आ जाएगी। ये पहला दर्ज है, पहले शख्स ने आपके साथ ये रहनुमाई की। एक दूसरा जिसे आपने पूछा, उसने आपके साथ थोड़ा इससे और मेहरबानी की, और वो क्या की कि उसने किया कि देखो चलो आओ निकलो बाहर, आओ मैं तुम्हें बाहर वो मेन रोड पे बताता हूँ, वो आपको वो बाहर सामने सड़क पे ले जाए, फिर वहां से कहे कि यहाँ से जाओ, यहाँ से मुड़ो तो सामने मस्जिद है। ये दूसरा शख्स है मुखलिस, आप पहले से ज्यादा इसके एहसानमंद होंगे ना, इसने आपको रास्ता दिखा दिया। एक तीसरा शख्स है, वो कहता है कि चलो बैठो, मैं तुम्हें वहां छोड़ ही आता हूँ, आप मेरी गाड़ी में बैठे, मैं आपको वहां छोड़ आती हूँ। सबसे ज्यादा कौन आपका मुखलिस हुआ? कि जिसने आपका हाथ थाम के उस मस्जिद तक छोड़ दिया। इसी तरह हिदायत का सफर जो है ना, हम लोग अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मरहलों पे होते हैं। अगर दीन से दूर हैं इस वक्त बहके हुए हैं, तो हम कहते हैं ना कि एह दीन सिरातल मुस्तकीम, तो हम कौन सी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इस ये रास्ता मुझे दिखा, यानी कि मुझे कोई ऐसा जरिया दिखा कि जिससे मेरी जिंदगी में ये काम आसान हो जाए। फिर अब चल पड़ते हैं इस रास्ते पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब इसकी जरूरत क्यों है दिन सिरातल मुस्तकीम की? अब आप इसलिए मांगेंगे कि अल्लाह पता चल गया दूसरा दर्जा के, कि अब इस पे चलने की तौफीक भी दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रास्ते मालूम होते हैं फिर भी नहीं आते। एक वो है जो भटकता हुआ आता है, मुझे बड़ा कभी कभी प्यार आता है कुछ लोगों पे, भटकते भुटकते इधर से घूमते घामते आते हैं और एकदम आते हैं, अच्छा जी यहाँ कुरान की क्लास होती है, पता चलता है जी ओ शुक्र हम तो 1 घंटे से घूम रहे थे, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे और पता ही नहीं चल रहा था। यकीन करें कि ऐसे लोगों पे मुझे जो मोहब्बत आती है, मैं सोचती हूँ अल्लाह इनका अजर कितना ज्यादा होगा, कहाँ से भटके, कहाँ से कितने मोड़ नहीं आए होंगे इनके लिए कि चलो छोड़ो पलट के चलते हैं, नहीं मिलता तो ना से, कितनी सच्ची तड़प। और कितने ही हजारों लोग हैं जिनको पता है यहाँ क्लास होती है, वो निकलते ही नहीं घर से, इस इत्मीनान के साथ बैठे हैं कि जरूरत नहीं, ये अहम नहीं। क्या दोनों का मुकाम एक ही होगा? नहीं, एक नहीं हो सकता। क़यामत के दिन जो फैसले होने हैं ना, बाज़ जगह हम खुद हैरान हो जाएंगे, हैरान कुन हद तक फैसले होंगे कि अल्लाह मैंने तो इतनी बारीक बीनी से कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ऐसे हिसाब होगा। ये जो हम कहते हैं ना मालिक यौमिद्दीन, दुनिया में भी आपने कभी बड़ी तैयारी करके जाते हैं INS ऑफिस में इंटरव्यू के लिए, कोई भी अमूमन होते हैं ना जैसे पेपर्स में इंटरव्यू देना, आप हर मुमकिन तैयारी करके जाते हैं कि ये सवाल पूछेंगे तो ये जवाब, ये पूछेंगे तो ये, फिर वहां आप जाते हैं तो वो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो आपके जहन में नहीं आता, तो आप क्या सोचते हैं? मैंने सोचा भी नहीं था ऐसे पूछेंगे। आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं, आप सब चीजें मुमकिन हद तक सवाल याद कर जाते हैं, ये पूछेंगे ये करेंगे, और आप देखते हैं वहां जाके वो सवाल पूछते हैं जो आपको नहीं पता होता, आप फेल हो जाते हैं। अब ये छोटे छोटे तजुर्बे ना, यकीन करें क्यामत के दिन हमारे ऐसे ऐसे मामले सामने आएंगे, हम खुद हैरान हो जाएंगे, अल्लाह इस तरह तो मैंने सोचा भी नहीं था, इतनी गहरी सोच तो मेरी थी नहीं। क्या अभी भी आपको कुरान पाक पढ़ते हुए कई दफा ये चीज महसूस नहीं होती एकदम कोई चीज ऐसी सामने आने लगती है कि आप हैरान होते हैं, मैंने ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था। तो उसी रब का ये कलाम है जिसने कल हिसाब लेना है। इसीलिए दुनिया में एहतियात के साथ जिंदगी गुजारनी है, बचते बचाते, किसी के पाँव पे पाँव ना आए, किसी का को हाथ से झटक ना दो। फिर इंसान अपने आप को मुहासबे के लिए पेश करता है। अल्लाह के नबी सल्लम की बात याद आ गई, गजवा बदर का मौका था, और तो उसके बाद एक मौके पर नबी सल्लम को मिंबर पर खड़े हुए और पेश किया कि लोगों, अगर मैंने तुम में से किसी के साथ कोई ज्यादती की हो तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे आके बदला ले लो। मैं नहीं चाहता कि कल क़यामत के दिन तुम आओ और मेरे ऊपर कोई हुज्जत कर दे। अल्लाह का नबी ये कह रहा है जिसने कभी कुछ नहीं किया। अब सोचे सहाबे कराम का क्या हाल होगा, क्या हो आज बदला ले लो, कल ना कहना कि मेरे से कुछ बदला दो। हमने कभी ऐसे सोचा? हम एक रस्मी कलामी माफी मांगते हैं, कहा सुना माफ करना। कहीं सफर पे जाते हैं ना तो कहते हैं साथ, कहा सुना माफ करना। किसी के घर से वापस आते कहते अच्छा खाया पिया बख्श देना, कहते हैं ना, लेकिन ये शौर से नहीं कहते। अल्लाह के नबी ने पूरे शौर से कहा कि लोगों अगर मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की है तो कर लो। एक सहाबी ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ अल्लाह के नबी आपने मेरे साथ एक ज्यादती की है। अब सहाबे कराम जोश में उस शख्स को देख रहे हैं, ये कर क्या रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी बिल्कुल बुरा नहीं मानते। कहा कुछ ना कुछ इसको बताओ, मैंने तुम्हारे साथ क्या ज्यादती की है, मैं तैयार हूँ बदला ले देने को। वो सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लम, गजवे बदर की सफ बंदी का मौका था, आप सफें सीधी करा रहे थे, तो आपने अपने नेजे से सबको सफों को सीधा कर रहे थे। ऐसा होगा ना जैसे सीधा करते हैं, यूं यूं सीधे हो जाओ, तो आपकी जो छड़ी थी उसकी नोक मेरे पेट पे लगी थी, तो मैं तो आपसे बदला लेना चाहता हूँ। यानी शौरी नहीं, लेकिन आपकी नोक से मेरे पेट पे लगी थी। सहाबे कराम का बस नहीं चल रहा कि उसको खामोश करा दें, लेकिन उसको बदला लेना था। नबी सल्लम ने कहा कि मैं हाजिर हूँ। आप उसके पास आए, कहा आओ तुम भी मेरे पेट पे इसी तरह चुभो दो। वो कहने लगे नहीं अल्लाह के नबी सल्लम, जिस वक्त आपने मुझे ये नोक चुभवाई थी मेरे पेट पे कपड़ा नहीं था, बरहना था। आप भी अपनी कमीज उतारिए। आपने कमीज उतार दी, बुरा नहीं माना, मैं इतना बड़ा, मेरा ये मुकाम। और सहाबा कराम का बस नहीं चल रहा कि उस सहाबी को खामोश करा दे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने अपने आप को बदले के लिए पेश कर दिया। और आपको मालूम है कि जब आपने कमीज उतारी तो सहाबी आगे बढ़े और आपके पेट का बोसा ले लिया। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लम, कहाँ मेरी ये मजाल कि मैं आपसे बदला लूँ, मैं तो ये चाहता था कि मैं अपने होंठ मुबारक आपके पेट मुबारक पे लगा दूँ ताकि कल इनके ऊपर जहन्नम की आग हराम हो जाए, और वो मैंने कर लिया। ये उनकी मोहब्बत का आलम है। लेकिन आप देखिए कि नबी सल्लम का कैसा ये एक आजी नहीं, कभी हमने लोगों कैसे किया, सच सच बताए। हम जब कहते हैं ना कि अच्छा कहा सुना माफ करना, तो मैं इसको थोड़ा सा तब्दील करवाती हूँ। मैं कहती हूँ इसको यहाँ ऐसे कहा करें, जो मैंने आपकी गिरफ्तें की वो माफ कर देना, मैंने आपकी जो चुगलियाँ आपके पीछे से खाई माफ कर दें, मैंने जो आपकी लगाई बुझाई की वो माफ कर देना, मैंने जो आपके बारे में बदगुमानियां पैदा की वो माफ कर देना, वो जो मैंने आपका हक मारा वो माफ कर देना। इस तरह कह के देखें, फिर अपना मुहासबा होता है। ये सफर जो है ना, ये असल में हमारा मुहासबे का ही सफर है। आप महसूस करेंगे कि ये है वो किताब जो मेरी थी, हमने तो इसको दूसरों के लिए रखा था, ये यहूदियों के लिए, ये नसरानियों के लिए सूरत, ये ईमान वालों के लिए। वो कहाँ रहते हैं, वो मक्का में पहले रहते थे फिर मदीना में चले गए, नहीं, फी ही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है, ये तुम्हारी किताब है, तुमने अपने आप को बदलना है। इसलिए तड़प के मांगना है इहदीना सिरात अल मुस्तकीम। तो पहली चीज क्या थी, रास्ता मालूम नहीं, दे दे। गुमराह लोग हैं वो मांगेंगे अल्लाह रास्ता दे दे। दूसरे दर्जे पे वो लोग हैं जिनको पता तो है, चलते नहीं, वो क्या कहते हैं, अल्लाह इस पे चलने की अब तौफीक भी दे दे। तीसरा दर्जा किसका आता है, हम जैसे नाकारे लोगों का। चल तो रहे हैं अपनी औकात के मुताबिक, लेकिन दुआ क्या मांगते हैं कि अल्लाह चलते रखना, आखिरी लम्हे तक इस किताब के साथ जुड़े रहें, इस हिदायत के सफर पे रहें, आखिरी उम्र में हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि तू नाराज हो जाए। आपको मालूम है ना कि ऐसे बदबخت भी मौजूद हैं कि मुसलमान हो गए लेकिन आखिरी उम्र में इस्लाम से फिर गए, दीन पे हैं, आज दीन के नजरियाती बदल गए उनके, वो दीन उनके अपने नजरियात उनके अपने अफकार का मजमुआ बन चुका, वो उस दीन में साइंस को लेके आए तो साइंस के करते करते इस दीन का नुकसान करने लगे, वो गैरों की मोहब्बत का शिकार हुए तो उन्होंने मुसलमान काफिर हिंदू यहूदी सबको एक ही मजहब में लाके खड़ा कर दिया। ये हम ही जैसे हिदायत वाले ही लोग थे ना, कभी मुसलमानों में हिदायत के नाम पे जो गुमराही है ये उनके लिए तीसरी बात है कि अल्लाह हिदायत पे चल रहे हैं तो इसी पे रखना, कहीं सोच उल्टी ना हो जाए, दिमाग दूसरी तरफ ना चल जाए। और यकीन करें एक लम्हा लगता है, एक लम्हा इंसान हिदायत की पगडंडी से उतरता है ना, इतनी दूर जाके पड़ता है कि फिर वापस आने के लिए कितने एग्जिट छोड़ के पलट के आना पड़ता है। इतना खौफ लेना चाहिए अपने दिल में इस चीज का, किसी मामले में अल्लाह ताला मुझे मिसलीड ना करना, गुमराह ना करना, चल रही है तो सीधी चलती जाऊं चलती जाऊं। और ये वो लोग हैं जो दीन पे अमल कर रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, दीन की बातें सही हैं, नजरियात दुरुस्त हैं। वो मांगते हैं कि अल्लाह आखिर तक चलती जाऊं चलती जाऊं चलती जाऊं। और उसके बाद फिर आखिरी दर्जा किसका है, ये है अंबिया कराम का, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, कि अल्लाह मंजिल पे पहुंचा देना, मंजिल पे पहुंचना है। नबी सल्लम ने अगर मांगी, आपके सहाबा ने ये इहदिना सिरात अल मुस्तकीम मांगी, तो कैसे मांगी कि अल्लाह चल रहे हैं इस सफर पे ठीक है लेकिन आखिर दम तक लेके जाना। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि मेरा एक कदम जन्नत में और एक उससे बाहर हो, मैं उस वक्त तक भी अपने आप को जन्नतियों में नहीं शुमार कर सकता जब तक कि मेरा दूसरा कदम भी जन्नत में ना पहुंच जाए। उनको कदर थी ना इस नेमत की। एक सहाबी थे, बड़ी नेमतों में थे, नेकियां भी करते थे लेकिन मुस्तरिब रहते थे, बेचैन थे हर वक्त, लेकिन जब मौत का वक्त आया, जख्मों से चूर है, बिस्तरे मर्ग पे हैं और इत्मीनान से जी रहे हैं, इत्मीनान से मर रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये क्यों, आज दुखी हैं तकलीफ में हैं तो आप बड़े मुतमईन दिख रहे हैं, कल तक आप बड़े खुश थे और परेशान थे, वजह क्या है? कहा हाँ, इसकी वजह क्या है कि कल भी नेकियां करता था, अच्छे काम करता था, लेकिन गम क्या था कि न जाने अंजाम क्या होगा, खात्मा कैसा होगा। आज इत्मीनान किस बात का है कि मौत इस्लाम पे आ रही है, आज इसलिए खुश हूं, अपने अंजाम के ऊपर अच्छी चीज पे मर रहा हूं। खात्मा बिल खैर बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, याद रखिए, क्योंकि अगर खात्मा अच्छा हो जाता है ना तो सब अच्छा होता है। फिर ऐसे लोगों को दुनिया की बातें सताती नहीं है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह। याद होगा आपको उनका वाक्य, किसी ने आके उनके सामने बात की कि फला आपकी बुराई कर रहा है, किसी ने आके कहा कि अबू हुरैरा आपको मालूम है फलां शख्स आपको बड़ा बुरा भला कह रहा था, बड़ी बुराइयां कर रहा था आपकी। कहा अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे अबू हुरैरा का तो हर वक्त तीन बातों का गम है, मौत आएगी तो किस हाल में आएगी, अच्छे काम पे आएगी कि बुरे, नामे अमाल मिलेंगे तो दाएं में मिलेगा कि बाएं में, और पुल सरात पे होऊंगा तो खैर से गुजर जाऊंगा या वहां कट जाऊंगा। अगर इन तीन मौकों पे मैं खैर से गुजर गया तो मुझे परवाह ही नहीं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं या बुरा। और अगर इन तीन में से किसी एक मौके पे रुक गया तो सारी दुनिया को हक पहुंचता है कि वो मुझे बुरा कहे कि अबू हुरैरा बड़ा बुरा इंसान था। इस तरह फिर इंसान अपना मुहासबा करता है कि आखिरी लम्हे तक मुझे बचते रहना है, बचते ही रहना है। और ये दुनिया का सफर बड़ा तकलीफ दे है। आप देखिए कि शैतान दुश्मन बन के पीछे लगा हुआ है, दुश्मन बन के। आप गाफिल हो सकते हैं, वो गाफिल नहीं होता, दिन भर बहकाने की कोशिश करता है। हम सो जाते हैं थके, वो ख्वाबों में आ जाता है बुरे वसवसों की सूरत में, नाइटमेयर्स, बुरे बुरे ख्वाब दिखाता है, गंदे ख्वाब दिखाता है। जो कोशिशें दुनिया में जिंदगी में नहीं पूरी कर पाता, मौत के वक्त कहते हैं कि पानी का प्याला लेके आ जाता है। मरने वाले को प्यास महसूस होती है, ये पानी लाता है, कहता है मैं पिलाऊंगा, लेकिन शर्त क्या है? मुझे खुदा मान लो, शिर कर लो, पानी पिला दूंगा। जो कमजोर हैं वहां भी कमजोर पड़ेंगे, और जो डट गए, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो नहीं जाएंगे आगे। तो क्या सीखा आपने? क्या ये वही सूरत फातिहा है जो हर रोज नमाजों में पढ़ते हैं? कोई इतने अल्लाह ताला के साथ मुकालमे कर रहा हो, क्या फिर उसका तवज्जो रहेगी कि चूल्हे पे खाना जल रहा है कि नहीं जल रहा, टेलीफोन की बेल बज रही है, किसका फोन होगा? आज हमारी नमाजें बेकैफ क्यों हुई? तवज्जो नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर से उधर भटक रहे हैं। पढ़ते भी हैं लेकिन रस्मन, सुनते भी हैं तो रस्मन। मैं चाहूंगी कि आप सूरत फातिहा की तिलावत सुनिए पूरे शऊर के साथ, अपने दिल में झांकते हुए, और एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
एक और आवाज में तिलावत सुनते हैं तदब्बुर करते हुए। जितनी बात सुनी है उसको जहन में रखिएगा।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
एक और आवाज में
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
کیوں رونا آ رہا تھا ان کو، ہمیں کیوں نہیں آتا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور شاید ہمیں ہدایت کی نعمت کی اتنی قدر نہیں. اس کے بعد اب جو بھی نماز پڑھیں ہم سب اس میں اپنے دل کی حالت کو دیکھیں گے، کیا واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ قربت محسوس ہوتی ہے جو ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لوگ یہیں پہ رکیں گے، تو نیکسٹ ویک ہم لوگ اگلے لیسن کو شروع کریں گے جو سورۃ بقرہ کی پہلی 20 آیات پہ مشتمل ہوگا. شعور کے ساتھ کہیے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ، اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.